नमस्कार भारत, 15 नवंबर दिन बुधवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। गुजरात में चुनाव से पहले हर दिन नजर आ रहे हैं नए नए रंग।
बोलो जय भवानी, जय भवानी।
राहुल गांधी कर रहे हैं मंदिरों के दर्शन, लेकिन क्या कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा?
उन्होंने ये काफी सोच समझ के डिसीजन लिया है कि इन्होंने यहाँ गुजरात में इवन इफ्तार पार्टी भी बंद कर दी है।
फिल्म पद्मावती का विरोध जारी, कोई पीछे हटने को नहीं है राजी।
अरे कुछ तो समझा जाए, इतिहास सिर्फ कटाए से बने थे, खून से लिखा गया है इतिहास, आज उस पर काली पोतने का प्रयास नहीं चलेगा।
करेंगे बात पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान के साथ।
कभी कभी चुप रहने में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, यू नो।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, रजनीश कुमार से। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐतिहासिक सर्वे में देश के लोगों ने समलैंगिक शादी के पक्ष में मतदान किया है। इसमें 61.6% लोगों ने समलैंगिक शादी का समर्थन किया है। इस सर्वे में 79.5% लोग शामिल हुए थे। समलैंगिक शादी पर सरकार ने 8 हफ्तों तक चलाए पोस्टल सर्वे के जरिए लोगों की राय ली। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल ने कहा था कि अगर लोगों की राय समलैंगिक शादी के पक्ष में आती है तो इस साल के अंत तक इसे कानूनी मान्यता दी जा सकती है। सर्वे के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री टर्नबुल ने कहा,
The Australian people have spoken in their millions and they have voted overwhelmingly yes.
लोगों ने इंसाफ के पक्ष में हामी भरी है। ये हामी प्रतिबद्धता के लिए है और ये हामी अपने प्यार के लिए है। अब ऑस्ट्रेलियाई जनता ने हमें संसद से इसे पास कराने की जिम्मेदारी दी है। ये थे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल के शब्द। जिम्बाब्वे की सत्ताधारी पार्टी ने देश के सैन्य प्रमुख पर विश्वासघाती बर्ताव करने का आरोप लगाया है। इससे पहले सेना ने सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दी थी। आर्मी प्रमुख ने देश के उपराष्ट्रपति को बर्खास्त किए जाने के बाद राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को चुनौती दी थी। आर्मी प्रमुख जनरल चिवेंगा ने कहा था कि सेना राष्ट्रपति मुगाबे की पार्टी में जारी उठापटक को खत्म करने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं सेना प्रमुख के इस बयान की देश की सत्ताधारी पार्टी ने कड़ी निंदा की थी। पार्टी ने कहा कि जनरल चिवेंगा की टिप्पणी राष्ट्रीय शांति को अस्थिर करने और बगावत को हवा देने के लिए है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि सैन्य धमकियों के सामने वो झुकेगी नहीं और राजनीति हमेशा बंदूक के ऊपर रहेगी। 93 साल के मुगाबे ने पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति को उत्तराधिकार की कलह में बर्खास्त कर दिया था। अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी हुई है। इसमें कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। इसमें 2 बच्चे समेत कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर भी मारा गया है। ये गोलीबारी उत्तरी कैलिफोर्निया के तहेमा काउंटी के एक स्कूल में हुई।
The suspected shooter is deceased by law enforcement bullets. That's what I'm told.
संदिग्ध पुलिस को गोली मारा गया। हम अभी हमलावर का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हमें संदिग्ध हमलावर के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 2 पिस्तौल मिली है। ये थे तहेमा काउंटी के पुलिस अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हमला करने के फैसले के अधिकार की जांच की है। पिछले 40 सालों में पहली बार है जब एक कांग्रेसनल कमेटी में उस मुद्दे पर बहस चल रही है जिसका संबंध राष्ट्रपति से है। विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष रिपब्लिकन सांसद बॉब क्रॉकर ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने पिछले महीने अमरीका को 3रे विश्व युद्ध की राह पर लाने की कोशिश की थी। इसी साल अगस्त महीने में ट्रंप ने उत्तर कोरिया को धमकी दी थी कि उसे ऐसे युद्ध का सामना करना होगा जिसे विश्व ने कभी नहीं देखा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी के 100 सदस्यों ने घोषणा की है कि वो शुक्रवार को पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। इनका कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र का अभाव है। इन सदस्यों में कुछ काउंसलर भी हैं। एक खुले पत्र के जरिए इन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों के आसपास व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। मैं हूं संदीप सोनी। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन सकते हैं लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत उस राज्य से जहां कांग्रेस दो दशक से ज्यादा समय से वनवास में है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जहां अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके नतीजे 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीबीसी के सजग श्रोताओं ने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात में इन दिनों सियासत के कई रंग नजर आ रहे हैं, उन्हीं रंगों में से एक रंग पर आज हम बात कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं। वो अब तक कम से कम 11 मंदिरों में जा चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मंदिरों की यात्रा कांग्रेस को गुजरात के विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचा सकती है? बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने अपनी रिपोर्ट में इसका जवाब तलाशने की कोशिश की है।
अब मैं दूसरा नारा देता हूं, आप जवाब देना, बोलो जय भवानी, जय भवानी।
गुजरात की चुनावी रैलियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इन जयकारों और उनके द्वारा किए गए तकरीबन दर्जन भर मंदिरों के दर्शन पर राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने जब तंज कसा, तो सोमवार को राहुल ने महसाणा में इसका खुद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव के भक्त हैं और विरोधियों को जो कहना है वह कहें, क्योंकि उनका सत्य उनके साथ है। कांग्रेस जिस तरह से मंदिरों को तवज्जो दे रही है, उस पर गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट कहते हैं,
पिछले 2 साल से कांग्रेस सोच समझ के ये पॉलिसी कर रहे हैं। मतलब जब से भरत सिंह सोलंकी गुजरात के पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं, तब से उन्होंने ये काफी सोच समझ के डिसीजन लिया है कि इन्होंने यहाँ गुजरात में इवन इफ्तार पार्टी भी बंद कर दी है। क्योंकि पहले बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगाती थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है।
इसके उलट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे घनश्याम शाह कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है।
ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बन रहा है, पहले भी कांग्रेस पार्टी, गुजरात की कांग्रेस पार्टी इस तरह का सॉफ्ट हिंदुत्व करती रही है, इवन बिफोर नरेंद्र मोदी, और बाद में भी ऐसा ही मंदिरों में जाना है, रिलीजियस स्लोगन बोलना है, वो कंसिस्टेंटली कांग्रेस का भी वो रवैया रहा है।
कांग्रेस और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर देखा जाता रहा है। कांग्रेस को सेक्युलर पार्टी समझा जाता है, जबकि बीजेपी को हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में देखा गया है। घनश्याम शाह भी इस बात को स्वीकार करते हैं, हालांकि वह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व की बराबरी नहीं कर सकती है।
जिस तरह से एग्रेसिवली बीजेपी कर रही है, उतना कांग्रेस नहीं कर सकती है और नहीं करती है। इसीलिए को जितना भी करेगा, यहाँ के लोग उनको बीजेपी की कंपटीशन में समकक्ष नहीं मानेंगे, वो मानेंगे कि वो सेक्युलर है, सेक्युलर माने एंटी रिलीजन।
वहीं उमट बीजेपी के मुस्लिम प्रेम पर भी बात करते हैं।
जबकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हैं। 2002-2007 के चुनाव में तो यहाँ तक देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम एरिया में जाके अपना पर्चा भी नहीं बांटते हैं। जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ट्रिपल तलाक के मामले के बाद हो सकता है कि मुस्लिम महिला शायद भाजपा के प्रति थोड़ा सहानुभूति रख के बीजेपी को वोट भी दे सकती है। इसलिए दोनों पार्टी जो है अभी हिंदू और मुस्लिम वाला गेम खेल रही है।
वरिष्ठ पत्रकार श्याम पारेख कहते हैं कि वे तकरीबन 25 सालों में पहली बार कांग्रेस को गुजरात में मजबूती से चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं।
25 साल में मैं ये कहूंगा कि पहली बार कांग्रेस को लड़ते हुए देख रहा हूँ। अब ये मैं जब लड़ता हुआ कह रहा हूँ तो ये सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, लोकली भी काम हो रहा है। अब जो सवाल है वो ये है कि क्या कांग्रेस में इतना दम है इस वक्त कि वो लोगों को ये कन्विंस करा पाए कि बीजेपी की जगह उनका बटन दबाए और उनको इलेक्ट करे।
9 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस या बीजेपी, किसके हिंदुत्व की रणनीति की जीत होती है, यह तो अब 18 दिसंबर को ही पता चलेगा, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
बात हो रही थी गुजरात की। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे गुजरात में है, टेलीफोन लाइन के जरिए विनीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विनीत, केम छो, मजामा?
मजमा संदीप सोनी, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं अहमदाबाद के एक होटल में हूँ और मेरे साथ सामने इस वक्त तीन अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए, राजस्थान पत्रिका। और हफ्ते भर से मैं अखबार यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं शायद थोड़ा हार्श हूँ, लेकिन जो लोकल इश्यूज हैं या मुद्दे हैं जिन पर बात होती है या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। ये वही अखबार है जिनके फ्रंट पेजेस शायद हम दिल्ली में भी बैठ के देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मैं मेरे सामने खुला है तो जो फ्रंट है वो लाइफस्टाइल डिजीजेस किस तरह से बैकवर्ड स्टेट्स में जो ज्यादा लोग जो है लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से उनकी मौत हो रही है उस वो एक बड़ी कहानी है यहाँ पे इनके बिल्कुल टॉप पे है। दीपिका पादुकोण का स्टेटमेंट है कि भाई पद्मावती को लेकर जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है वो काफी रिग्रेस्ड है, मतलब देश है वो कई कदम पीछे आया है, ऐसा उनका कहना है। मतलब ये गुजरात चुनाव को लेकर जो लोग सोच रहे होंगे कि अखबार पटे पड़े होंगे फ्रंट पेज, वो यहाँ पे नहीं दिखता है, एटलीस्ट हिंदी और अंग्रेजी में बता दूं। उसके बाद उसके अलावा जो सेकंड पेज में खुला है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो हार्दिक पटेल को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता है शक्ति सिंह गोहिल, उनका अखबार के मुताबिक एक रिमार्क आया था कि हार्दिक पटेल में सरदार पटेल का डीएनए है, इसको लेकर जो सरदार पटेल का परिवार है उनके एक सदस्य ने इसका विरोध किया है कि भाई उन्होंने जो सरदार पटेल हैं उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनकी तुलना जो है वो हार्दिक पटेल से नहीं की जानी चाहिए। और कांग्रेस बीजेपी ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किए हैं और उस पर उसको क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पर एक वीडियो, एक और खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने एक वीडियो था जो बीजेपी की तरफ से रिलीज किया गया था, पप्पू वीडियो करके है, जिसमें कहा गया था कि भाई जो पप्पू है ये कैरेक्टर था उस वीडियो में वो विकास की भाषा नहीं समझते हैं, तो उस वीडियो को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। एक और खबर है कि जिसमें कहा गया कि अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस में कौन है सीएम का उम्मीदवार गुजरात में उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हार्दिक का एक जो वीडियो सर्कुलेट कर रहा है तो एक और खबर है उसमें एक तस्वीर है उस वीडियो के बारे में, कोई दो वीडियो शायद और आए हैं और सर्कुलेट हो रहे हैं, तो टोटल चार मतलब उस वीडियो की तस्वीरें हैं और उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं, किस तरह से हार्दिक पटेल का कोई बचाव कर रहा है या फिर उन पर हमला कर रहा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। इसके अलावा अगर मैं डीएनए में बात करूं तो बॉटम में रसगुल्ला को लेकर जो बंगाल और उड़ीसा में एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ था तो आखिर बंगाल उसमें जीत गया है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी उसकी खबर है।
विनीत, इन खबरों को हम दिल्ली से अभी हम कवर करेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली और उत्तर भारत में हर दिन सर्दी बढ़ रही है, तो क्या ये सर्दी जो है वो गुजरात तक पहुंच रही है या चुनाव की गर्मी ज्यादा असर दिखा रही है जमीन पर?
देखिए चुनाव की बात तो यहाँ पर हो ही रहा है लेकिन मैं मतलब हो ही रही है सर्दी, मौसम ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल है, ऐसे बहुत सर्दी तो नहीं है, चुनाव की गर्मी है लेकिन चुनाव की गर्मी आपको अखबारों में नजर नहीं आती है, और जो जो खबरें आप दिल्ली में पढ़ेंगे वो आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जो मुद्दे हैं यहाँ पे पोल्यूशन है, लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का एक मुद्दा है, जो कुछ इलाकों में विकास हुआ है कुछ इलाकों में विकास नहीं हुआ है, किसानों का क्या मुद्दा है, वो यहाँ पर आपको अखबारों में नहीं दिख रहे हैं, एटलीस्ट मुझे नहीं दिखे हैं पिछले एक हफ्ते में।
बहुत शुक्रिया विनीत खरे, अहमदाबाद से बता रहे थे, गुजरात से छपने वाले अखबार आज क्या बयां कर रहे हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है संदीप सोनी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इतिहास क्या है? इसके जवाब में न जाने कितनी परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, इतिहास ये है, इतिहास वो है और इतिहास न जाने क्या क्या है। बहरहाल इतिहास की एक विषय वस्तु इन दिनों विवाद का पर्याय बनी हुई है, इशारा आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं पद्मावती फिल्म की, जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इसका विरोध हो रहा है और कई दिनों से विरोध जारी है। कल कोटा के एक सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की गई जहां इस फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री जहां पद्मावती का समर्थन कर रहा है, वहीं राजनीतिक दल जनता की नब्ज देखकर अपना रुख तय कर रहे हैं। सुनिए अभिमन्यु साह की रिपोर्ट।
राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में।
फिल्म पद्मावती को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में विरोध के स्वर तेज हो चुके हैं। भाजपा जहां फिल्म को हिंदू स्वाभिमान से जोड़कर देख रही है, तो कांग्रेस गुजरात चुनाव को देखते हुए राजपूत समाज की सहानुभूति बटोरने में लगी है। भाजपा अलाउद्दीन खिलजी को क्रूर शासक बता रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
रानी पद्मावती भारत की समाज में, हिंदू समाज में, राजपूत समाज में उसको लेकर जो जन भावनाएं हैं, उनकी जो महिलाओं की स्वाभिमान का प्रतीक के रूप में रानी पद्मावती को देखते हैं। एक जो बर्बरता से शासन करने वाले जो मुस्लिम मुगल जो शासक रहे 11वीं शताब्दी से लेकर लगभग 18वीं शताब्दी तक, उनको असली रूप में न दिखाने की जो एक देश में एक इतिहासकारों के द्वारा और फिल्मकारों के द्वारा एक गलत प्रयास रही है, उसको हम अपने निजी तौर पर खंडन करते हैं।
कांग्रेस का सुर भी भाजपा से अलग नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी का नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल खुद राजपूत समाज से आते हैं। इनसे पहले कांग्रेस के किसी नेता ने पद्मावती को लेकर खुलकर विरोध का इजहार नहीं किया था।
अगर इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ी हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए। करणी सेना को पहले दिखाई जाए मूवी, और जो भी आपत्तियां हैं वो दूर होने से पहले, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए।
राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा है कि इस फिल्म को राजपूत समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।
अगर 16,000 स्त्रियों के साथ में जौहर करने वाली पद्मावती को अगर अलाउद्दीन की प्रेमिका दिखाया जाएगा, ये बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? पद्मावती बंद करो। अरे कुछ तो समझा जाए, इतिहास सिर कटाए से बने थे, हमने हमारे बुजुर्गों ने कटाए हैं, खून की नदियों से लिखा, खून से लिखा गया है इतिहास। आज उस पर काली पोतने का प्रयास नहीं चलेगा। जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जलेगा, रोक सको तो रोक लो, इस पद्मावती को बंद करो।
करणी सेना फिल्म के विरोध में इस महीने उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों में प्रदर्शन करेगी। पिछले सप्ताह फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली ने एक वीडियो जारी कर फिल्म पर हो रहे विवाद पर कहा था कि वो पद्मावती की कहानी से हमेशा से प्रभावित रहे हैं। ये फिल्म उनकी वीरता और बलिदान को नमन करती है। अभिमन्यु कुमार साहा, बीबीसी दिल्ली।
कड़वाहट के बाद बात अब उस रसगुल्ले की, जिसकी वजह से बंगाल और ओडिशा के बीच तलवारें खिंच गई थी, लेकिन अब वही तलवारें वापस म्यान में चली गई हैं, क्योंकि विवाद सुलझ गया है और फैसला ये हुआ है कि रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का है, ना कि ओडिशा का। कोलकाता से अमिताभ भट्टाशाली की रिपोर्ट।
चीज है मीठा, पर उसी को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के बीच थोड़ा तीखापन दिख रहा था पिछले 2.5 सालों से, पर अब फैसला हो चुका है। बंगालियों के सबसे पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला अब बंगाल का ही रहेगा। भारत सरकार की पेटेंट ऑफिस ने बंगला रसगुल्ला को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दे दी है। करीब 150 साल से रसगुल्ला का आविष्कारक के रूप से जाना जाता है नवीन चंद्र दास को। नवीन चंद्र का ही वंशज और कोलकाता के रसगुल्ला का प्रसिद्ध दुकान केसी दास के मालिक धीमान दास,
रिकॉग्निशन এত বছরের পর আমরা পেয়েছি প্রায় 150 বছর মেইন যেটা অরিজিনাল।
धीमान दास का कहना था अगली साल रसगुल्ला के 150 साल मनाया जाएगा और उससे ठीक पहले रसगुल्ला को ये मान्यता प्राप्त हुई। बहुत ही खुश है वो। बंगाली रसगुल्ला नाम से जो मिठाई हर जगह बनाया और बेचा जाता है वो अब बंद होगा, धीमान दास का शब्द। पड़ोसी ओडिशा के तरफ से ये दावा पेश किया गया था कि पूरी जगन्नाथ देव का मंदिर में साल में एक बार रसगुल्ला भोग चढ़ाया जाता है। इसके समर्थन में वो कई प्रमाण भी पेश किए थे, पर पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था ओडिशा के रसगुल्ला से बंगाल की रसगुल्ला काफी अलग है। धीमान दास का कहना था बंगाल की रसगुल्ला में सिर्फ छेना का ही इस्तेमाल किया जाता है, वो भी गाय की दूध से बनी छेना ही चाहिए, इसीलिए बंगाल की रसगुल्ला बेहद ही नरम होता है। पर कई जगह बंगाल की रसगुल्ला नाम से जो बनाया और बेचा जाता है उसमें सूजी या मैदा मिलाया जाता है। अब लोगों को पता चलेगा कि बंगाल की रसगुल्ला कैसा होता है। धीमान दास का शब्द। रसोगुल्ला का एक खास दुकान उत्तरी कोलकाता के 111 साल पुरानी चित्तरंजन मिष्ठान्न भंडार है। दुकान का वर्तमान मालिक निताई चंद्र घोष का कहना है,
गुरु खावा के रसगुल्लार प्रस्तुति शुरू हो जाए। रसगुल्ला टेक्सचर की हबे एटा भीषण भावे ए करे एवं ताके आमी कतखानी सफल भावे।
निताई घोष का कहना है, रसगुल्ला बनाने का प्रक्रिया तो उस वक्त शुरू हो जाता है जब गाय को खिलाया जाता है। वो क्या खा रही है उसी पर रसगुल्ला का टेक्सचर निर्भर करता है। दूध को कैसे प्रसंस्करण किया जाता है उस पर निर्भर करता है उससे कैसा छेना मिलेगा। बाकी तो रहा चीनी का हल्का सा रस। निताई चंद्र घोष का शब्द। सिर्फ रसगुल्ला तैयार करना ही नहीं, उसका रस स्वादन करने का भी खास तरीका है।
রসগোল্লা খাবো কিভাবে আমি চামচে ভেঙে আমরা ডিসকারেজ করি, রসগোল্লাকে ধরবো কিভাবে, যে আমি রসগোল্লাটাকে পরতে পরতে খাবো, একসঙ্গে গপ করে খাবো না, বাইট বাই বাইট খাবো।
নিতাই চন্দ্র ঘোষ কা সুঝাও হ্যায় চম্মচ সে কতই নহিঁ, দোনো উঙ্গলিয়ো সে হলকে সে রসগোল্লা কো পকড়িয়ে, আর এক বারি সে রসগোল্লা খায়া নহিঁ জাতা হ্যায়, ছোটে ছোটে টুকরে সে খায়া জাতা হ্যায়, और आखिर में एक चुस्की लगाइए रस का, पर रसगुल्ला खाने के बाद कभी पानी ना पीजिए। चलिए इनके सुझाव को मानते हुए हम भी स्वाद लेते हैं बंगला रसगुल्ला का।
ये थे कोलकाता से अमिताभ भट्टाशाली, जो अकेले अकेले रसगुल्ला खा रहे थे। बहरहाल अब बात झारखंड की, जिसका जिक्र होते ही छवि उभरती है जंगल और आदिवासियों की, आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की। बिहार से अलग होने के 17 साल बाद आज भी आदिवासियों को लगता है कि उन्हें वो नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। झारखंड से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के सुदूर उलिहातु गांव में हुआ था। इसी गांव के मुखिया रेजन मुंडा बता रहे हैं कि उन लोगों को बिरसा की तरह लड़ना ही होगा, क्योंकि इस वीर योद्धा के निधन के 117 साल बाद भी बिरसा की धरती में जल जंगल जमीन और पारंपरिक अधिकारों को लेकर आदिवासियों का संघर्ष जारी है।
जैसा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई किया था, उसी तरह हम लोग फिर गांव-गांव के हर गांव से हम लोग आदमी ग्रामवासियों में जुट करके हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और रास्ता हम लोग जाम करेंगे।
हाल ही में उलिहातु में ग्राम सभा की बैठक में सैकड़ों महिलाएं पुरुष जुटे थे। वे नाराज थे, रह रहकर स्थानीय मुंडारी भाषा में नारे लगा रहे थे कि बिरसा की जन्म स्थली से पवित्र माटी नहीं ले जाने देंगे। दरअसल 15 नवंबर यानी आज अलग राज्य स्थापना दिवस को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में भव्य तरीके से सरकारी समारोह का आयोजन है। इसमें बिरसा मुंडा के मान सम्मान बढ़ाने की कोशिशें होंगी। इस समारोह में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शिरकत करेंगे। तब संशय और नाराजगी के बीच बीजेपी के लोग पद यात्रा के साथ इस गांव की पवित्र माटी लेकर समारोह में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के आदिवासी विधायक शिवशंकर उरांव का कहना है कि वे लोग झारखंड के वीर सपूतों की पहचान पूरे राज्य के साथ देश को कराना चाहते हैं, इसलिए माटी उठाने में सबकी भागीदारी रही। इससे इतर बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा के सीने में भी एक टीस है।
जल जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए जो बिरसा मुंडा ने कानून बनाया, उसको छेड़छाड़ करके आदिवासियों के हित के नाम पर बहला करके उनके जमीन को लूट रही है, और इस पर हम लोगों को बहुत ही आक्रोश है और दुखी है।
जबकि उलिहातु के ही पंचायत प्रतिनिधि सामुएल पुरती स्थानीय भाषा में सवाल खड़े करते हैं।
बिरसा न तुम रे जमीन साल सीधा राजनीति हुआ उतना, जबकि भाजपा सरकार
जमीन को लेकर सरकार की नीतियां आदिवासियों को झकझोर रही है, तथा पिछले सितंबर महीने में जब बीजेपी की कई शीर्ष नेता यहां आए थे तो उन लोगों की उपेक्षा की गई थी। हालांकि आदिवासियों में संघर्ष और तमाम कश्मकश के बावजूद पहाड़ों जंगलों में अब भी बिरसा के वीर गाथा गीतों में गूंजते हैं। जाहिर है आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान के तौर पर पूजते हैं और उनके लौट आने का इंतजार भी करते हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी उलिहातु।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही।
रईस फिल्म का ये गाना आपको सुनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता था कि इस गीत में शाहरुख खान के साथ पाकिस्तान की एक अदाकारा नजर आई थी जिनका नाम है माहिरा खान। कुछ वक्त पहले न्यूयॉर्क में अभिनेता रणबीर कपूर के साथ अपनी एक तस्वीर सामने आने के बाद माहिरा खान को ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल किया गया। इसके बाद माहिरा ने मीडिया से कम ही बात की है, लेकिन बीबीसी संवाददाता शुमायला जाफरी ने पाकिस्तान में उनसे मुलाकात की तो सबसे पहले यही पूछा कि ट्विटर पर जब उन्हें ट्रोल किया जा रहा था तो वो खामोश क्यों रहीं।
दिल तो करता था कि जवाब देने का, लेकिन आई थिंक कभी कभी चुप रहने में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, यू नो, स्पेशली जब आप चाहे जो भी कहें कि इट डजंट मैटर। अभी भी जब मैं कोई भी एक चीज़ अगर मैं बोलती भी हूँ तो शुमायला अनफॉर्चुनेटली एक लफ्ज़ पिक करके मीडिया जो है उसको ऐसे बढ़ाता है। कोई कहता है कि माहिरा खान ने अपोलोजाइज कर दिया, कोई कहता है माहिरा खान ने कहा कि ये मेरी अपनी ज़िंदगी। मैं ये पढ़ रही होती हूँ और देख रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में बात करना बेकार है। मेरी एक हिस्ट्री है, आप उस हिस्ट्री पे मुझे जज कर सकते हैं। मेरा काम है, आप उस काम पे मुझे जज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको जिस चीज़ पे मुझे जज करना है कर सकते हैं।
इंडिया जाके काम करना कैसे लगा?
बहुत अच्छा लगा। फर्स्टली आई वॉज वर्किंग विद शाहरुख, विच वॉज अ वेरी बिग डील फॉर मी, यू नो। मैंने हमेशा यही सोचा था कि अगर करूँगी तो शाहरुख खान के साथ फिल्म करूँगी। दिमाग में सोचा था, जैसे हम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना, तो वो भी एक चीज़ दिल और दिमाग पे थी।
अभी कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह इंडिया में, कोई पाइपलाइन में कोई चीज़ें हों, कोई और प्रोजेक्ट्स हों कुछ?
नहीं अभी तो नहीं, अभी हालात ऐसे नहीं।
हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसे एलिमेंट्स हैं, इंडिया में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की कोलैबोरेशन वगैरह को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखते या अपोज करते हैं। कैसा लगता है आपको बीइंग एन आर्टिस्ट?
यू नो, आर्ट कनेक्ट्स पीपल। जब आप मुझसे पूछती हैं इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ तो लैंग्वेज भी कनेक्ट करती है, यहाँ तो हर चीज़ कनेक्ट करती है, और उसमें भी यू नो हमने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। सो इट्स वेरी सैड।
ये थी पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान जो कह रही थी भारत पाकिस्तान को कई चीज़ें जोड़ती हैं लेकिन हमने सरहदें बना रखी हैं। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर फुटब�ल की दुनिया से। AFC एशियन कप क्वालिफायर में गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में म्यांमार बनाम भारत का मुकाबला ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में दोनों ही टीम ने 2-2 गोल किए। ये मुकाबला कल यानी 14 नवंबर को खेला गया था। भारत ने ग्रुप ए के 13 के 13 मैच जीत लिए हैं, यानी कि भारत के साथ हुए 13 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की, जिसके कारण अपने ग्रुप में भारत अंकों में सबसे ऊपर है। अगली खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। चाइना में चल रहे चाइना ओपन सुपर सीरीज में मिक्स डबल्स में भारत की जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और सात्विक सहराज ने चाइना ओपन सुपर सीरीज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के मिक्स डबल्स की इस जोड़ी ने डेनमार्क की जोड़ी निकलस नॉर सारा थाइगसन को 21-16, 19-21 और 21-20 से हरा दिया। भारत का अगला मुकाबला 16 नवंबर को खेला जाना है। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। कल यानी 16 नवंबर को भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। इस टेस्ट मैच के लिए दोनों ही टीमों की तैयारी जोरों पर है। भारत के साथ होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के लिए श्रीलंकाई टीम ने अपने ऑलराउंडर खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को केवल बल्लेबाजी के लिए उतारेंगे। श्रीलंका के इस फैसले पर बात कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
बैटिंग पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे तो इस वक्त अगर आप देखेंगे श्रीलंका की जो बैटिंग है वो बहुत कमजोर है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि अपना सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी पर रखें कि बैटिंग लाइनअप में एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। तो ये उनका एक अपना तरीका है, उनका अपना उनकी कोशिश है कि कम से कम एक डिपार्टमेंट में तो वो अच्छी तरह जो है योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए।
16 नवंबर को होने वाला ये मुकाबला कोलकाता में खेला जाना है।
क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर और वकार यूनिस ने आज ही के दिन 28 साल पहले टेस्ट में पदार्पण किया था और वकार से पहली बाजी हारकर सचिन तेंदुलकर बादशाह बने थे। पूरी खबर विस्तार से पढ़ने के लिए आइए bbchindi.com पर। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेंगे आपसे विदा। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और मेरे साथी अनंत प्रकाश फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रहे थे। नमस्कार भारत में आज इतना ही। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।